अपशिता कमरे की ओर मुड़े और कॉल पिकअप करते हुए बोली, क्या हुआ नंदिनी, इतनी देर रात कॉल क्यों कर रही हो? नंदिनी ने ड्रामे से भरी आवाज में कहा, इशु, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तेरी आज फ्लाइट थी, तू वहां पहुंच गई और मुझे बताया भी नहीं। इप्सिता ने कहा, अरे कैसी बात कर रही है तू, मेरी आज फ्लाइट थी लेकिन मैं नहीं गई, मुझे हल्का फीवर था और अभिमन्यु ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। नंदिनी ने पूछा, क्या हो गया तुझे, फीवर कैसे आ गया? इप्सिता ने बताया, थोड़ा पानी में भीग गई थी इस वजह से, परेशान मत हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नंदिनी ने पूछा, अच्छा तो फिर कब जा रही है? पता है मैंने सोचा था तेरे साथ चलूंगी, तेरी शादी में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अगर तेरे साथ चलूंगी तो ठीक रहेगा और मैंने पैकिंग भी कर ली है। कब की है तेरी फ्लाइट, मैं अपनी फ्लाइट उसी दिन बुक कर लूंगी। इप्सिता ने कहा, सीरियसली मेरे साथ चलोगी, आंटी से पूछ लिया? नंदिनी ने कहा, और क्या, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैंने मॉम से परमिशन ले ली थी और सब कुछ अरेंज करवा लिया था, लेकिन तू है कि अपने होने वाले पति से ही फुर्सत नहीं है, तू तो मुझे भूल ही गई है, अगर तू नहीं चाहती कि मैं अभी चलूं तो ठीक है मैं नहीं चलूंगी। इप्सिता ने अपने हाथ सहलाते हुए कहा, बस कर, कितना ड्रामा करेगी, मैं तेरे ड्रामे से परेशान हूँ, फोन रख, मैं अभिमन्यु से बात कर लेती हूँ, फिर तू भी हमारे साथ चलना। नंदिनी ने कहा, ओके चल। इप्सिता ने अभिमन्यु को फोन किया। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में पूछा, दोपहर की फ्लाइट से क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्सिता ने धीरे से कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंदिनी भी हमारे साथ चलना चाह रही थी, अगर वो हमारे साथ चलेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम कंफर्टेबल रहोगी और शादी की तैयारी में तुम्हें कंपनी मिल जाएगी, अगर नंदिनी चलना चाहती है तो ठीक है, हम उसका भी टिकट बुक कर लेंगे। इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाया और कमरे में गई। उसने नंदिनी को कॉल कर बताया और उसे दोपहर में रेडी होने और सीधे एयरपोर्ट आने को कहा। नंदिनी अपना सामान पहले ही पैक कर चुकी थी और वो सुबह ही रेडी हो गई। वो बिल्कुल सही समय पर एयरपोर्ट पहुंच गई। वो इप्सिता की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। उसकी खुशी देखकर समझ में आ रहा था कि वो इप्सिता की शादी या फिर खुद समर्थ से मिलने को लेकर खुश है। इप्सिता जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची उसे नंदिनी मिल गई और तीनों साथ में फ्लाइट में चढ़ गए। नंदिनी ने बिजनेस क्लास की फ्लाइट देखकर हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और मन ही मन बोली, पहली बार बिजनेस क्लास में चढ़ी हूँ और मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी होगी। इप्सिता ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप उसके साथ सीट पर बैठ गई। सारा रास्ता दोनों बातें करती रहीं। अभिमन्यु नंदिनी और इप्सिता को बातें करते देख मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट लैंड हुई और अभिमन्यु की कार के साथ इप्सिता को लेने संजय भी खड़े थे। अभिमन्यु इप्सिता और नंदिनी के पास आकर बोला, आप लोग आराम से घर जाइए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करिएगा। इप्सिता ने कहा, ओके बाय। अभिमन्यु ने पलकें झुकाई और नंदिनी उन दोनों को धीमी आवाज में बातें करते देख मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु अपनी कार में बैठ गया और इप्सिता नंदिनी के साथ संजय की कार में बैठ गई। कार में बैठते ही इप्सिता की नजर कार के फ्रंट मिरर से पीछे पड़ी। अभिमन्यु की कार को ही देख रहा था और नंदिनी ने यह नोटिस करते हुए इप्सिता को छेड़ते हुए कहा, ओहो क्या बात है, तुम दोनों लैला मजनू की तरह बिहेव कर रहे हो, इस तरह इशारों में कौन बातें करता है, वो भी इतनी धीमी आवाज में, आखिर बात क्या है? इप्सिता ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, तू बेकार में बातें कर रही है। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ अब तू मना करेगी ही, अपनी गलती कौन मानता है, ओ सॉरी, लेकिन ये गलती नहीं प्यार है जो तुम दोनों में बढ़ रहा है। इप्सिता ने नंदिनी के हाथ पर धीरे से मारते हुए कहा, जस्ट शट अप, ये बेकार की बातें करना बंद कर और प्लीज घर पहुंचकर मम्मी पापा के सामने सब कुछ मत बता देना। नंदिनी ने इप्सिता को साइड हक करते हुए कहा, पागल हूं क्या मैं तो तुझे छेड़ रही थी और वैसे भी ये अच्छी बात है ना कि तुम दोनों में इतना प्यार बढ़ रहा है, अब तो तुम दोनों को हमेशा साथ रहना है तो अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, मुझे अच्छा लगा तुम दोनों को इस तरह देखकर। इप्सिता मुस्कुराई। थोड़ी देर में उनकी कार सूर्यवंशी हवेली के सामने रुकी। नंदिनी और इप्सिता कार से बाहर निकली। लगभग डिनर का समय हो चुका था। सूर्यवंशी हवेली में इप्सिता के मम्मी पापा के साथ उदय भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। इप्सिता और नंदिनी घर के अंदर आईं। इप्सिता ने कहा, मम्मी पापा हम आ गए। उदय पीछे मुड़ा, उसने नंदिनी को इप्सिता के साथ देखकर मुस्कुराया और जल्दी से उठकर उनके पास आया। उसने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, इशु हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आओ अंदर। इप्सिता उदय से गले मिल गई। उदय ने नंदिनी की ओर देखकर कहा, नंदिनी हमें आइडिया नहीं था कि आप इशु के साथ आ जाएंगी। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, क्यों मुझे इशु के साथ नहीं आना चाहिए था क्या? उदय ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हैं आप, हम तो आपको देखकर बहुत खुश हुए। नंदिनी ने कहा, मैं भी उदय। नंदिनी को दरवाजे पर खड़े होकर बात करते देख इप्सिता की माँ का थोड़ा मुंह बिगड़ गया। उन्होंने इप्सिता से कहा, जाइए आप लोग फ्रेश होकर आइए, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। इप्सिता के पिता ने इप्सिता के गाल को थपथपाते हुए कहा, बेटा आपके सारे एग्जाम कैसे हुए, वहां अभिमन्यु के साथ एंजॉय तो किया ना, अभिमन्यु ने आपकी अच्छी तरह से देखभाल की। इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाया। इप्सिता की माँ ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप, कुंवर साहब इप्सिता को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर गए हैं तो उन्होंने अच्छे से ही ध्यान रखा होगा, आपको इप्सिता से ये सारे सवाल करने की जरूरत नहीं है। इप्सिता आप रूम में जाएं और फ्रेश होकर जल्दी वापस आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, हम साथ में डिनर करेंगे। इप्सिता ने सिर हिलाया और अपने रूम की ओर जाते हुए बोली, नंदिनी क्या कर रही हो, चलो ऊपर।
पर इप्सिता नंदिनी को लेकर अपने रूम में गई। थोड़ी देर बाद वो लोग फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। इप्सिता खाना खा ही रही थी कि उसे अभिमन्यु की याद आई। उसने मन ही मन सोचा, अभिमन्यु वो भी अपने घर पहुंच गए होंगे, पता नहीं उन्होंने डिनर किया होगा या नहीं। इप्सिता का खाना खाने में मन नहीं लग रहा था, वो अभिमन्यु के बारे में ही सोच रही थी। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु अपने घर के डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ था। मासा ने अभिमन्यु से कहा, आपके प्रोजेक्ट का वहाँ काम अच्छी तरह से चल रहा है ना? अभिमन्यु ने कहा, जी मासा सब कुछ ठीक चल रहा है। मासा ने कहा, तो फिर ठीक है, अभी आप डिनर करने के बाद रेस्ट कर लीजिए, कल से आपको ऑफिस भी ज्वाइन करना है। आपको नहीं मालूम ऑफिस में कितनी सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। अभिमन्यु ने कहा, मासा हम जानते हैं। मासा से बात करने के बाद अभिमन्यु खाना खाते हुए बोला, पता नहीं इप्सिता ने खाना खाया भी होगा या नहीं, वहाँ मुंबई में तो वो हमेशा हमारे साथ ही डिनर करती थी। डिनर क्या, हम लोग तो अपना ब्रेकफास्ट और लंच भी एक साथ ही करते थे। अभिमन्यु के दिमाग में यही बातें चल रही थी, तभी उसके सामने इप्सिता की सारी यादें, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगी। वो इप्सिता को याद करके मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन कहा, हम इप्सिता के बारे में सोचकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अभिमन्यु ने खुद से ये सवाल किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इप्सिता के बारे में ये सब कुछ कैसे और क्यों सोच रहा है। वहीं इप्सिता भी बार बार अभिमन्यु के बारे में सोच रही थी। क्रमशः